लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि महिलाओं की गरिमा और अपार मूल्य को हर संस्कृति में मान्यता दी जाए तथा विश्व के विभिन्न हिस्सों में उनके साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, जीवन में प्रेम की अभिव्यक्ति हमारे कार्यों के द्वारा होती है। हम जिन्हें प्रेम करते और जिनके द्वारा प्रेम किए जाते हैं, हम न केवल उनकी बातों को सुनते बल्कि उन्हें पूरा भी करते हैं। हम किसी और की सुने या ना सुने, हम अपने चाहने और प्रेम करने वालों की बातों को एक बार के लिए जरूर ही सुनते हैं, जो निसंदेह हमारे लिए उनके प्रेम को व्यक्त करता है। हम मानव का यह व्यवहार एक दूसरे के प्रति हमारे संबंध को और भी मजबूती और स्थिरता प्रदान करती है। श्रोताओं, पास्का के 6वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठों में हम प्रेम में आज्ञा पालन की बातों को सुनते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में इस बात की थाह लें कि क्या हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, क्या हम उनकी आज्ञाओं को अपने कार्यों के माध्यम पूरा करते हैं, यीशु की आज्ञाओं की पूर्ति में क्या हमें आनंद का अनुभव होता है, क्या यह हमें फलहित होने में मदद करता है।
जिस प्रकार पिता ने मुझे प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है, तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों को यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। यह मेरी आज्ञा है। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे, और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो।
श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें यीशु ख्रिस्त में मित्रों के मनोभावों को धारण करने की प्रेरणा दे, जिससे हम अपने आज्ञा पालन के द्वारा उन्हें अपना प्रेम प्रदर्शित करते हुए उनके संग प्रेम के मजबूत संबंध में सदैव जुड़े रहें। प्रेरित चरित से लिया गया आज का पहला पाठ हमें कहता है कि ईश्वर किसी के संग पक्षपात नहीं करते हैं, और यह हमारे लिए ईश्वर के सर्वोच्च प्रेम की निशानी को व्यक्त करता है। ईश्वर की निगाहों में हम सब बराबर हैं, क्योंकि उन्होंने हमें अपने संतान स्वरूप बनाया है। अपने प्रिय संतान को जो उन पर आस्था और विश्वास करती और उनकी बातों को सुनते हैं, वे उन्हें अपनी आत्मा से पोषित करते हैं, जैसे कि उन्होंने पेत्रुस की बातों को सुनने वाले गैर यहूदियों के संग किया। इस तरह वे यीशु ख्रिस्त में अपने विश्वास के कारण बपतिस्मा प्राप्त करते और नए जीवन के अधिकारी बनते हैं। श्रोताओं, संत योहन के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमें एक दूसरे को प्रेम करने का आह्वान करता है। यह हमें अपने जीवन में एक दूसरे के संग ईश्वरीय प्रेम को साझा करने का निमंत्रण देता है, क्योंकि ईश्वर ने हमें सबसे पहले प्रेम किया। यह हमारे लिए पिता के प्रेम का साक्षात प्रमाण है, जहां उन्होंने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा, जिससे हम न केवल जीवन बल्कि संपूर्ण जीवन प्राप्त कर सकें। श्रोताओं, जिस तरह हम अपने प्रेम करने वालों को एक सुंदर और कीमती उपहार देने की चाह रखते हैं, जो न केवल हमारे दिल के करीब रहता बल्कि पाने वाले के हृदय को भी स्पर्श करता है, पिता के दिए गए उपहार पुत्र यीशु ख्रिस्त में हम इन्हीं बातों को पाते हैं। यीशु अपने पिता के प्रियतम पुत्र हैं, जो पिता ईश्वर के प्रेम में हृदय में निवास करते हैं। वे हम सबों को अपने पवित्र हृदय में संजो कर रखते हैं, साथ ही वे हमसे यही चाह रखते हैं कि हम उन्हें अपने हृदय में एक निवास स्थान दें। यदि हम अपने जीवन में प्रार्थना, संस्कारों के अनुष्ठान, नेक कार्यों द्वारा उनकी आज्ञाओं का अनुपालन करते हुए उन्हें एक स्थान देते, तो हमारा जीवन ईश्वरीय प्रेम से साराभोर हो जाता है। हम उनमें और उनके द्वारा हमें मिलने वाले संपूर्ण जीवन का अनुभव करते हैं, जो अनंत खुशी के रूप में हमारे लिए आती है। अतः संत योहन हमें कहते हैं कि जो प्रेम करता वह ईश्वर की संतान है और वह ईश्वर को जानता है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। वहीं जो प्रेम में जीवन यापन नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। श्रोताओं, आज का सुसमाचार जिसे हमने सुना हमें एक दूसरे को वैसे ही प्रेम करने का आह्वान करता है, जैसे कि ईश्वर ने हमें प्रेम किया। यह हमारे लिए उनके द्वारा दी गई एक महत्वपूर्ण आज्ञा है, जिसको सुनना और पूरा करना हमें संपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करता है। यह हमारे लिए आनंद का स्रोत बनता है। यीशु हमें एक दूसरे को वैसे ही प्रेम करने को कहते हैं, जैसे उन्होंने हमें प्रेम किया है। उन्होंने न केवल हमारे पापों की क्षमा दी, बल्कि क्रूस के काठ पर अपनी बाहों को फैलाकर उन्होंने सदा सदा के लिए हमें अपनी बाहों में भर लिया, जिससे हम उनसे कभी अलग ना हों। जिस भांति हम अपने करीब मित्रों को अपने जीवन की गूढ़ बातों और रहस्यों को बतलाते हैं, यीशु ख्रिस्त ने हमें अपना मित्र कहते हुए अपने संपूर्ण जीवन को हमारे संग साझा किया है। श्रोताओं, इस भांति यीशु ने हमें अपने लिए चुना है, जिससे हम उनके लिए बाहर जाएं, दूसरों से मिलें और जरूरतमंदों के लिए अपने को दें। हम यीशु के लिए मीठा और अच्छा फल उत्पन्न करने हेतु भेजे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने जीवन के द्वारा हमें अनंत जीवन का मीठा फल दिया है। हम सभी प्रेम से प्रेरित और पोषित होकर अपने लिए नहीं वरन दूसरों के लिए अच्छा और मीठा फल उत्पन्न करें। आइए हम यीशु की दी गई आज्ञा पर चिंतन करें, जिससे हम उसका सार समझ सकें, जो हमें अपने जीवन को अर्थपूर्ण तरीके से जीने में मदद करेगा।
प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम से आ। रखे जो इस दुनिया में ईश्वर की संतान है। सिखाता आपस में बुराई न करे न तू जीवन में,
रहना सिखाता आपस में बुराई न करे न तू जीवन में,
अपनी बड़ाई जो करता नहीं में उसका नाम है,
अपनी बड़ाई जो करता नहीं दुनिया में उसका नाम है।
प्रेम करो प्रेम रखो ईश्वर प्रेम से आया है।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति प्रेम का भाव प्रदर्शित करना जो बदला नहीं चुका सकता, यह ईश्वर के निस्वार्थ प्रेम की शैली का अनुसरण करना है। उक्त बात संत पापा फ्रांसिस ने 4 मई के एक संदेश में कही है। पोप फ्रांसिस ने शनिवार को अपूर्णे की मरामत विषय पर आयोजित सम्मेलन के 130 प्रतिभागियों से वैटिकन के क्लेमेंटीन सभागार में मुलाकात की। प्रतिभागी संत मरिया मार्गरेट को येसु के दिव्य दर्शन की 350वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पोप से मिले। अपने संबोधन में संत पापा ने मरामत शब्द पर चिंतन करते हुए कहा कि इस शब्द को हम बाइबल में अक्सर पाते हैं। पुराने व्यवस्थान में यह बुराई के लिए मुआवजे का एक सामाजिक आयाम था। मूसा के नियम अनुसार इसका अर्थ था चुराई गई वस्तु को वापस करना। यह सामाजिक जीवन की सुरक्षा में न्याय स्थापित करना था। हालांकि संत पापा ने कहा कि मरामत नए व्यवस्थान में ख्रिस्त के द्वारा लाए गए मुक्ति के ढांचे के भीतर एक आध्यात्मिक प्रक्रिया का रूप लेता है। क्रूस के बलिदान में मरामत या क्षतिपूर्ति पूरी तरह से प्रकट होती है। इसमें नवीनता यह है कि यह पापी के प्रति ईश्वर की दया को प्रकट करता है। इसलिए प्रायश्चित न केवल मनुष्यों के आपस में मेल मिलाप में योगदान देता, बल्कि ईश्वर के साथ मेल मिलाप में भी योगदान देता है, क्योंकि किसी पड़ोसी के विरुद्ध की गई बुराई ईश्वर के प्रति भी एक अपराध है। प्रवक्ता ग्रंथ का हवाला देते हुए जिसमें लेखक लिखते हैं, उनके आंसू चेहरे पर झरते हैं। पोप ने कहा कि अब भी कितने आंसू ईश्वर के चेहरे पर झर रहे हैं, जब दुनिया में लोगों की प्रतिष्ठा के खिलाफ दुर्व्यवहार हो रहे हैं। संत पापा ने सम्मेलन के प्रतिभागियों को उनके सम्मेलन की विषय वस्तु की ओर आकृष्ट करते हुए कहा कि इसमें दो विपरीत अभिव्यक्तियां हैं, अपूर्णे की मरामत। उन्होंने कहा कि इस तरह वे भी इस आशा के लिए आमंत्रित किए जाते हैं कि हर घाव ठीक हो सकता है। घाव का पूरी तरह ठीक हो पाना कभी कभी असंभव प्रतीत होता है, जब यह प्रियजन के हमेशा के लिए खो जाने से संबंधित हो, लेकिन दिल की शांति पाने के लिए मेल मिलाप की प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना और माफी मांगना है। संत पापा ने कहा, माफी मांगने से संवाद फिर से खुल जाता है और भ्रातृत्व के बंधन को फिर से स्थापित करने की इच्छा प्रकट होती है। अतः क्षतिपूर्ति क्षमा के अनुरोध की प्रामाणिकता की गारंटी देता है, उसकी गहराई उसकी ईमानदारी को प्रकट करता है और भाई के दिल को छू लेता है, उसे सांत्वना देता और मांगी गई माफी को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए संत पापा ने कहा, यदि अपूर्णीय को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है तो भी घाव को सहने योग्य बनाकर प्यार को हमेशा लाया जा सकता है। संत पापा ने याद किया कि येसु ने संत मरिया मार्गरेट से मनुष्यों के पापों के कारण हुए अपराधों की क्षतिपूर्ति के लिए प्रार्थना करने को कहा था। उन्होंने कहा, यदि इन कृत्यों से ईश्वर के हृदय को सांत्वना मिलती है तो इसका अर्थ है कि क्षतिपूर्ति हर एक व्यक्ति के हृदय को भी सांत्वना दे सकती है।
अतः संत पापा ने प्रतिभागियों से कहा कि उनका सम्मेलन यीशु के पवित्र हृदय की क्षतिपूर्ति की इस सुंदर प्रथा के अर्थ को नवीकृत और गहरा करे, जिसे आज कुछ हद तक भुला दिया गया है। पोप फ्रांसिस ने शुक्रवार को रोम स्थित पौत्र क्रूस महागिरजाघर का दौरा किया, जहां उन्होंने रोम धर्म प्रांत के 100 पुरोहितों से एक बंद कमरे में मुलाकात की।
संत पापा फ्रांसिस ने इक्विप नोटर डेम आंदोलन के अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात की, जिनका करिश्मा दंपतियों और परिवारों का समर्थन करना और विवाह के सामाजिक संकट के संदर्भ में युवा दंपतियों के साथ निकटता और पल्लियों में पुरोहितों के साथ समुदायों का निर्माण करना। संत पापा फ्रांसिस ने वाटिकन में उनका स्वागत करते हुए उनके अनमोल काम की सराहना की। संत पापा ने कहा, आप युवा दंपतियों के साथ निकटता से रहते हैं ताकि वे जीवन की कठिनाइयों और अपने वैवाहिक संबंधों में अकेला महसूस न करें। इस प्रकार आप बाहर जाती कलीसिया की अभिव्यक्ति हैं, जो लोगों की स्थितियों और समस्याओं के करीब जाती है और परिवारों की भलाई के लिए खुद को प्रस्तुत करती है। विवाह की रक्षा करना एक सच्चा मिशन है जिसमें पूरा परिवार शामिल है, पति पत्नी से लेकर बच्चों तक, दादा दादी से लेकर पोते पोतियों तक, और विशेष रूप से इसका मतलब संभावित और हमेशा के लिए प्यार की उस गवाही को बचाना है जिसमें विश्वास करने के लिए युवा संघर्ष करते हैं। संत पापा ने उनके समक्ष दो विचार प्रस्तावित किए। पहला नवविवाहित दंपतियों से संबंधित है। संत पापा ने कहा, आप उनका ख्याल रखें, उन्हें एक जोड़े के रूप में अपने जीवन में विश्वास की खोज करने की जरूरत है। आज बहुत से लोग यह समझे बिना शादी कर लेते हैं कि विश्वास का उनके विवाहित जीवन से क्या लेना देना है। शायद इसलिए क्योंकि शादी से पहले उन्हें यह बात किसी ने नहीं बताई थी। मैं आपको विश्वास की पुनः खोज की यात्रा में उनकी मदद करने के लिए आमंत्रित करता हूँ, ताकि वे यीशु के लिए जगह बनाना सीखें। दूसरा विचार पति पत्नी और पुरोहितों के बीच सह जिम्मेदारी और आंदोलन के भीतर उनकी पूरकता से संबंधित है, जो दो बुलाहटों की समृद्धि और आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। संत पापा ने आगे कहा, इससे याजकवाद पर काबू पाने में मदद मिलती है जो कलीसिया को कम उपयोगी बनाती है। वास्तव में पुरोहितों के साथ मिलकर समुदाय के निर्माण करने की जिम्मेदारी उनकी भी है। और परम धर्म पीठ या समारोहों के कार्यालय ने संत पापा फ्रांसिस के मई और जून महीने की पारंपरिक धर्म विधि समारोह के कार्यक्रम को प्रकाशित किया है, जो इस प्रकार हैं: गुरुवार 9 मई प्रभु का स्वर्गारोहण समारोह, संत पेत्रुस महागिरजाघर में शाम 5:30 बजे संत पापा जुबली 2025 की घोषणा करेंगे और संध्या प्रार्थना की अगुवाई करेंगे। 19 मई पेंतेकोस्त रविवार संत पेत्रुस महागिरजाघर में प्रातः 10 बजे संत पापा फ्रांसिस ख्रिस्त याग समारोह का अनुष्ठान करेंगे। रविवार 26 मई पवित्र त्रित्व का महोत्सव, विश्व बाल दिवस के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में प्रातः 10:30 बजे संत पापा फ्रांसिस ख्रिस्त याग समारोह का अनुष्ठान करेंगे। रविवार 2 जून मसीह के पवित्र शरीर और रक्त का महोत्सव, संत जॉन लातेरन महागिरजाघर में 5:00 बजे संत पापा ख्रिस्तयाग समारोह का अनुष्ठान करेंगे। इसके बाद संत मरिया मेजर महागिरजाघर तक पवित्र साक्रामेंट का जुलूस होगा और अंत में संत पापा फ्रांसिस पवित्र साक्रामेंट की आशीष प्रदान करेंगे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।